महाराज के पावन पुण्य चरणों में समाज की ओर से विनती, हे स्वामी अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को कृपा करने की कृपा करें। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजन है सतत केवल ज्ञान पाने, पूजन के सतत केवल ज्ञान। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
की, परम पूज्य मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुन्ना श्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय।
हम सब लोग पिछले दिनों से लगातार संसार शरीर और भोगों की वास्तविकता का बार बार विचार करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों इस बात का अनुभव किया है कि किसी भी चीज को बार बार करने से उसका हमारे अंदर बहुत गहरा संस्कार बन जाता है। हमारे भीतर अगर आज जो बुराइयां हैं उनका भी कारण यही है कि हमने उन्हें बार बार दोहराया है, जिससे कि वे हमारे भीतर बहुत प्रबल रूप से बैठ गई हैं। अब हम चाह करके भी उन्हें अपने जीवन से नहीं हटा पाते। जब हमने ये बात समझी तो हमने ये भी समझी कि जब बुराइयों के साथ ऐसा हो सकता है तो क्यों ना हम भलाइयों को अपने जीवन में और निरंतर करें तो वे भी बहुत प्रबल हो जाएंगे। तब हम जैसे हम नहीं चाहते हुए भी बुरा कर लेते हैं, ऐसी अगर हमारी अंदर भलाइयों के संस्कार प्रबल हो जाएं तो नहीं चाहते हुए भी और हमसे भला होने लगेगा। सीधी सी प्रक्रिया। तो हम जो वास्तविकता है संसार की उसका बार बार चिंतन करें तो हमारे जीवन में जो संसार के बारे में, शरीर के बारे में और भोगों की सामग्री जिसका हम उपयोग करते हैं उसके बारे में हमारा भ्रम टूट जाएगा। और जैसे ही भ्रम टूटेगा वैसे ही हमारी इन चीज़ों से आसक्ति कम होगी और इनके माध्यम से होने वाला सुख दुख वो भी कम हो जाएगा। जैसा जैसा हमारा मोह घटता है वैसा हमें सुख दुख का अनुभव भी कम होने लगता है। जिसकी शरीर से जितनी ज्यादा आसक्ति है उसको शरीर पर होने वाले सुख दुख का उतना ज्यादा अनुभव होता है। जिस चीज में जितनी आसक्ति है, किसी चीज को हमने लाके रखा और वो चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, वो अगर कोई चुरा ले वे तो हमको ज्यादा दुख होता है। और कोई चीज ऐसे ही घर में पड़ी थी जिसका कोई विशेष उपयोग नहीं था, हमें भी उससे लगाव नहीं था, वो अगर चोरी चली जाए तो चली जाए और ले, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके साथ हमारा लगाव कम है। तो यह बात हमारे भीतर अब धीरे धीरे आनी चाहिए कि मुझे इन जिन चीजों में सुख दुख ज्यादा होता है, जिनके संयोग से सुख ज्यादा होता, जिनके वियोग में भी दुख ज्यादा होता, इसका मतलब है वो संयोग और वियोग में दुख नहीं होता, मेरे अपने इष्ट और अनिष्ट मान लेने में सुख दुख होता है। मैं संसार की वस्तुओं को, कुछ वस्तुओं को इष्ट मान लेता हूं, कुछ को अनिष्टकारी मान लेता हूं, और अपने आप ही, जबकि ना वो इष्टकारी है ना अनिष्टकारी, ऐसा लगता है जरूर। कुछ चीजें अवश्य हैं, जैसे विष है, विष सबके लिए अनिष्टकारी है, और अमृत अपना अमृत सबके लिए इष्ट है। लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, जैसे कि पानी बरसे, पानी बरसे, और अगर कुम्हार ने अभी अभी घड़े बना के रखे हैं तो उसको पानी बरसना अनिष्टकारी मालूम पड़ेगा लब जब। और अगर किसान भाई ने और अपना खेत बना के जोत के रखा है और पानी गिर जाए तो अमृत वर्षा समझो। अब बताइए, वर्षा तो पानी है ना, इष्ट है ना अनिष्ट है, लेकिन हम जैसा अपना उसमें मन बना लेते हैं, वैसी कल्पना करके, और हम सुख दुख का अनुभव करें। इस तरह अगर हम विचार करें तो आज हमें यही विचार करना है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी अपनी नहीं है पर जिनको हम अपना मान लेते हैं, और इतना ही नहीं है, अपना मान लेकर के भी उसमें कुछ चीजों को अच्छा मान लेते हैं, कुछ को बुरा मान लेते हैं। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो चीजें हमारी नहीं हैं उनको हम अपनी ना माने, उनको पर ही माने? भैया, स्व को स्व मानना, पर को पर मानना, यही आज अन्यत अनुप्रेक्षा की बात है। पर को हम स्व मान लेते हैं और स्व को भूल जाते हैं। हमारा अपना क्या है इसको हम भूल गए, क्योंकि हमने पर को अपना मान लिया, और होता ही ये है। सब हम देख रहे हैं, जो चीज दूसरे की है उसे हम अपनी मान लेते हैं तो अपनी चीज का ख्याल ही नहीं रहता है, बस उसी चीज को हम अपना बनाने की कोशिश करते हैं। इतनी अलिप्तता नहीं आ पाती है कि हम उन पर वस्तुओं को पर ही माने। अन्यत्व अनुप्रेक्षा के चिंतन के मायने हैं संसार से अलिप्त होकर जीना सीखना। संक्षेप में तो यही कहें, कैसे अलिप्त होकर के जीना सीखना। एक गुरुजी अपने शिष्यों से कहा करते थे कि सुनो, ऐसी साधना करो कि खाते हुए भी मानो नहीं खा रहे। अरे वाह, वो कहते कि ये भी कोई बात, अब खा रहे ही हैं तो मानो ना कि खा रहे हैं। इसमें क्या कि खाते हुए भी कह रहे हैं कि नहीं खा रहे। पानी पर चलो लेकिन पैर गीले ना हो। अरे ऐसा हो सकता है कि पानी पर चले और पैर गीले ना हो? ऐसी साधना होनी चाहिए, बोलते हुए भी मानो नहीं बोलने के समान, खाते हुए भी नहीं खाते, चलते हुए भी नहीं चल रहे हैं। ऐसी साधना शिष्यों के नहीं समझ में आता था। एक बार उन्होंने कहा कि अपन गुरुजी को खुद देखेंगे कि उनकी कैसी साधना, जब ऐसा मौका आएगा। वो कहते हैं कि पानी पर चले और भीगे ना, ऐसा होता है क्या? देखेंगे इनने कितनी साधना करी। अगर इन चीजों के अपन मोटे मोटे स्थूल अर्थ ले लेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये कहीं बहुत गहरे अर्थों में कहा जा रहा है कि खाते हुए भी नहीं खाना, बोलते हुए भी नहीं बोलना, चलते हुए भी नहीं चलना, पानी पर पैर रखते हुए भी गीले नहीं होना, ये क्या चीज है? तो एक दिन ऐसा मौका आ गया, पार करना थी नदी, गुरुजी भी साथ में से, सब शिष्य साथ में थे। अब नदी में वो देख रहे थे कि उतरोगे तो पार करना पड़ेगा, हम देखेंगे कि गीले होते कि नहीं होते। देर क्या लगना थी, पैर रखा हो गीला हो गया, अब हो जाने दो पार। फिर कहेंगे गुरुजी से कि देख ली हमने आपकी बात और आपकी साधना। और जब उस किनारे पहुंचे तो कहा, गुरुजी आप कहते थे कि पानी में पैर रखो लेकिन गीले ना हो, आपके तो पैर गीले हो गए। अरे गुरुजी समझ गए कि ये अभी तक मेरी बात का ठीक अर्थ नहीं समझे। तब उन्होंने कहा कि मेरा आशय ये नहीं था, पानी में पैर रखने पर पैर तो गीला ही होगा, मैं गीला नहीं हुआ, मेरा पैर गीला हुआ, मैं तो पैर से अलग हूं, मैं फिर भी नहीं भीगा, मैं आत्मस्थ हूं और फिर भी मेरे द्वारा जो कुछ कहा जा रहा वो पर कल्याण के लिए कहा जा रहा है, इसलिए बोलते हुए भी मैं नहीं बोल रहा, मैं तो अपने आत्मा के ध्यान में ही लीन हूं, मैं खाते हुए भी पंच परमेश्वरी के ध्यान में लीन हूं। कैसे अनंत भगवान शरीर में रह करके भी शरीर से परे हैं, अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही है लेकिन बोलने का कोई प्रयास नहीं है। इस तरह की साधना, इतने अलिप्त होकर के, जैसे अपन उदाहरण देते हैं कि जल में और कीचड़ के बीच रह करके भी कमल के समान रहना, यह मैंने कहा था कि साधना अन्यत्व की साधना, पर को पर मान करके उसका उपयोग तो करना लेकिन उसे पर मानते रहना। अच्छा, एक चीज ये कठिन लगे अगर तो एक आसान सी चीज, दूसरे अपने दोस्त की, जब अपन पढ़ते होंगे सब लोग समझते हैं इस चीज को, किताब लेके आए मान, अब दोस्त की किताब है अपन पढ़ रहे हैं, नए ढंग से उसको रखते हैं, नए ढंग से उसको पढ़ते हैं, चाहे जैसे पन्ने पलट देते हैं, और अगर उसका कवर खराब हो गया है तो क्या कवर बदल के देते हैं उसको? अब फोन अपनी आए काय को कवर चढ़ाओ, जैसी ही रेंत दे दे। हम उसे अपनी नहीं मानते हैं इसलिए उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक ऐसा ही जिस दिन हम सब पर वस्तुओं को पर मान करके व्यवहार करने लगे तब समझिएगा कि अब सद गई हमारी अन्यतनु प्रेक्षा। जब हमें और दूसरे ढंग से समझें, जब हमें शरीर और आत्मा, तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन से बिछुड़े ज्यो पय अरु पानी, जैसे कि दूध और पानी को जिसने कभी अलग अलग ना देखा हो वो तो एक ही मान करके जिएगा, ठीक है, लेकिन जिसे ये मालूम पड़ जावे कि दूध और पानी अलग अलग हैं वो तो दोनों को मिले होने पर भी अलग अलग ही मानेगा। इसी तरह जैसे कि देह और शरीर एक मेक हैं, जैसे कि तिल में तेल है, कास्ट में अग्नि है और दूध में घी है, ऐसे ही इस शरीर के भीतर मेरी आत्मा है, ये शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूं, ये शरीर तो जड़ है, मैं तो चेतन हूं। यह कैसे समझ में आएगा? शरीर पर से दृष्टि हटे और चेतना की तरफ दृष्टि चली जाए तो समझ में आ जाए। इसका उदाहरण देख लो आप अपने रोजमर्रा के जीवन में। हमारा एक बहुत अच्छा मित्र हुआ करता, अभी भी है हमारा मित्र वो, आज भी ऐसा नहीं समझना कि हम बाबा जी बन गए तो हमारा मित्र नहीं है, क्या है? तो वो जब उसमें भोपाल पढ़ने चला गया तो हर हफ्ते आता था घर पे, आता था तो साल भर, जब वो वैसे वो बहुत बहुत गरीब परिवार का था तो उतने बढ़िया उसके कपड़े वगैरह नहीं रहते थे। अब लेकिन वो जब इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ने लगा, इंजीनियरिंग करने लगा, तो फिर उसके कपड़े धीरे धीरे भोपाल जैसी सिटी में और बढ़िया पहनने लगा। अब वो जब घर आता हम लोग बहुत घंटों बात करते थे, अब बात खत्म ही नहीं होती। सब जानते हैं कि अगर मित्र मिल जाए और बहुत दिन के बाद मिले तो फिर क्या होता है, फिर शुरू हो जाती चर्चा। हम लोग को 12-1 बजे से खाना वाना खा करके बैठते तो शाम हो जाती, 5 बज जाते। अब लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि हम क्या बात करते थे क्योंकि हमें खुद भी नहीं मालूम कितनी बातें करते थे जिनका कोई सिर पैर नहीं हुआ करता था, और बस पढ़ाती नहीं थी बातें, इसकी उसकी सब दुनिया भर की बातें करते, जैसे कि एक हफ्ते की सारी बातें एक दिन में करते। अब कर ली, अब वो 5 बजे जब चले गया तो हमारे घर के लोग कहते हैं कि अब तो तुम्हारा मित्र पहले से ज्यादा बहुत मैंने अच्छा ढंग से रहने लगा। मैंने कहा कैसा? बोले तुमने नहीं देखा उसने कितनी सुंदर शर्ट बनवाई थी। अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं गया, मैं तो अपने मित्र को आया जानकर उससे बातों में लगा था, ना मैंने उसका शर्ट देखी ना उसका शरीर देखा, मैं तो सिर्फ अपने मित्र को देख रहा था। आज इस घटना को याद करता हूं तो लगता है कि आचार्य भगवंत भी यही कहना चाह रहे हैं, जिस समय हम उस मित्रता के चलते और सिर्फ अपने मित्र से, उस मित्र की चेतना से जुड़े थे, उसके कपड़ों से मुझे कोई मतलब नहीं, और लोगों ने देखे लेकिन हम 5 घंटे रहे, लेकिन फिर भी अजीब रिश्ता है रूह का जिस्म से, अजीब रिश्ता है रूह का जिस्म से, जिंदगी भर साथ रहे लेकिन तारुफ ना हुआ, मुलाकात तक नहीं। हाँ, ऐसा हम लोगों के साथ है, हम इसके साथ रहते हैं लेकिन इससे सबसे ज्यादा बेखबर हैं, ये अलग है मैं अलग हूं, ऐसा एहसास ही नहीं होता है। जल पै ज्यों जी तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों हुए एक मिल सुत रामा। जब ये शरीर भी जो मेरे साथ 24 घंटे रहता है वो मेरा नहीं हुआ, मुझे एक दिन अपनी यात्रा इसे छोड़ के करना पड़ती है, इसे छोड़ के चले जाना। भैया जो अपना है वो साथ में जाना चाहिए ना, सीधी सीधी सी बात है, मैं जहाँ भी जाऊँ वो साथ में जाए, मैं इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाऊँ तब भी ये शरीर मेरे साथ जाए ना, मैं एक गति से दूसरी गति में जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं सोच पाते हम। इतना पृथक अगर कोई चीज है तो फिर बाकी चीजें कितनी पृथक हैं, यह विचार हमारे मन में आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी सब चीजों को छोड़ देने में ही अन्यत्व भावना है, नहीं, वे तो छोटी हुई हैं, हम जबरदस्ती उनसे चिपके हुए हैं। जैसे एक घटना नहीं आती है कि वो बाबा जी ने उससे कहा कि तुम घर छोड़ दो, अरे कहने लगे महाराज अब ऐसे कैसे छोड़ दो, सब हमारे जिम्मे लगो है। अच्छा, हम बता देंगे तुम्हें कि तुम्हारे जिम्मे लगो है कि तुम्हैया चिपकी हो उनसे। दूसरे दिन बाबा जी जो है जब ये आए सुखम्मा से चिपके और चिल्ले आ रहे थे कि देखो तो छुड़ा दो हमें, छुड़ा दो जो पकड़े हैं। तो वो कहने लगे कि बाबा जी आप गैर बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं, खम्मा पकड़े कि आप ही पकड़े हो को, कहने अब तुम बताओ कि तुम गृहस्थी पकड़ेंगे गृहस्थी तुम्हें पकड़े, ध्याने तो तुम हमसे कह रहे थे गृहस्थी हमें पकड़े हैं, तुम इन ही छोड़ो चाह तो छूटी है ही, जो चीजें पर हैं वे हमसे छूटी हैं लेकिन हम ही हैं उनको अपना मानकर पकड़े बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है। इसलिए छोड़ने की बात मैं आपसे नहीं कहूंगा, वो जो हमने पकड़ रखा है वो अपनी पकड़ ढीली कर दो बस और कुछ नहीं, वे तो छूटी ही हुई है भैया, मुट्ठी खुली हुई रहती हमेशा, हम खोलना नहीं है मुट्ठी, बांधने का पुरुषार्थ छोड़ दो, बांधने की प्रक्रिया छोड़ दो तो खुली ही हुई है, बंधन की प्रक्रिया हम छोड़ दें अगर तो हम मुक्त हैं, हमारा स्वभाव है। हमें इस तरह इसको विचार करना चाहिए और अपन विचार करते हैं, आचार्यों ने जैसा जैसा कहा अपन वैसा सरल रूप में विचार करके देखते हैं, इनमें से जो बात आपको अच्छी लगे वो ले लें। जह नाम को भी पुरुषो पर तब मिनमति जानी तुम चैती तह सबे पर भावे नादून विमुंच रे नानी, समय सार जी में लिखा। बड़ी कठिन तो नहीं है, कठिन तो लगेगी, अर्थ नहीं मालूम रहेगा तो कठिन लगेगी, पर है बहुत सरल सी चीज, ऐसी चीजें लिखी समय सार जी ने। क्या लिखा कि जैसे कोई व्यक्ति पर वस्तु को पर जान करके छोड़ देता, इसी तरह ज्ञानी समस्त पर पदार्थों को छोड़कर आत्मा में लीन हो जाता। अब जी समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, अच्छा अपन सरल उदाहरण से समझ लेते। जैसे अपन गए धोबी के यहाँ, आप जाते कि नहीं जाते? कपड़े धुलवाने डालते होंगे तो जाते हो, तो कपड़े धुलवाने डालने गए और धोबी से अपने कपड़े लेकर के आए, लेकिन एक जैसे और भी लोगों के कपड़े होते हैं और बदल करके भूल से धोखे से दूसरे के कपड़े पहन करके अपने घर जा रहे हैं, लेकिन क्या मान रहे हैं मेरे कपड़े हैं, देखो तो कितने अच्छे हैं, अभी पहली बार ही धुल करके आए हैं, तो कैसा मन में आ रहा है भाव, सब लोग देखें मेरे कपड़े कितने बढ़िया हैं और मैं अभी अभी धुलवा के लाया हूँ, और अचानक एक व्यक्ति पीछे से आकर के कंधे पर हाथ रख के कहता कि सुनो भैया जी,
क्या बात,
हम तो आपको पहचानते नहीं, नहीं पहचानते होगे, लेकिन अभी पहचान हो जाएगी। ये जो कपड़े आप पहने हो तो भी यहाँ से ले आए, भी हम आए हैं, आपके हैं। अरे ऐसे कैसे आपके हैं? अरे भैया आपको विश्वास ना हो तो देख लो, हमारा निशान लगा है कालर के पीछे, धोबी का लगाया हुआ। अपन देखते हैं तुरंत धीरे से किया, अरे कौन हो गया। अब क्या करते हैं? अब तुरंत तो उतार के दे नहीं सकते, अब घर तक चलो भैया जी, तो पक्का हो गया कि तुम आए आए, ये तो हमने मान लिया, लेकिन अभी नहीं उतार सकते, अब पहने हुए हैं। पर अब अभी तक ये सोच रहे थे कि सब देख लेवे, अब जा सोच रहे कि कोई देख न लेवे, हम आया है नहीं और कोई को पता लग जाए। ठीक वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे हम पराई वस्तु को लाते हैं और उसे पराया मान करके उसका उपयोग करते हैं, ठीक ऐसा ही सारे संसार की वस्तुओं का हम उपयोग करना सीख जावे भैया, फिर देखो कितना आनंद आता। अरे एक दिन एक ही वस्तु को लेकर के ऐसा करके तो देख लो, अगर बात झूठी मालूम पड़े तो मत करना, पर सच है। आचार्य भगवंतों ने दया करके हमारे ऊपर उपकार करके ऐसी हमें सलाह दी, ऐसा हमें विचार दिया कि देखो तो ऐसा करके वस्तु को पर मान के अपने घर को भी पराया मान करके धर्मशाला मान करके, हाँ बहुत कठिन है, एक आध दिन रह के देखो मेहमान की तरह, तो फिर किसी चीज में कोई इंटरफियर नहीं करेंगे अपन, देख लो हमारे हिसाब से होना चाहिए। अभी तो अपन ये मानते हमारा घर है, हमारे हिसाब से होना सब, फिर अब हमारा है ही नहीं, तुम चाहे जैसा करो वैसा करो। तो खाना खाने बैठे, तुमने जो परस दिया, जैसे अपन मेहमान बन के दूसरे के यहाँ जाते हैं, वो जो कुछ भी परस दे अपन खा लेते हैं, नहीं? और घर के लोग भी हमारे साथ मेहमान की तरह व्यवहार करने लगे हैं, अगर किस तरह की प्रक्रिया हो जाएगी, बहुत बहुत ही अजीब। मेहमानी में मजा क्यों आता है अच्छा बताओ? अच्छा अच्छा खाने मिलता है इसलिए नहीं, उतना अच्छा तो घर में भी मिल सकता है, लेकिन वहां निश्चिंतता रहती है, कच्चू नहीं। दूसरे के घर आए हैं कच्चू विशेष कोई, उस समय हमारे अंदर से वो जो अपनेपन का भाव है, वो जो कर्ता बने और स्वामी बने के का भाव है, वो कम हो जाता है, इसलिए आनंद आता है। और ऐसा ही अगर अपन संसार में जिन चीजों को अपना माना है उनको भी पर मानने लगे, भी पर हैं ही तो हम ठीक ठीक मानने लगे, फिर देखिएगा। भरत जी घर ही में बैरागी, कौन से वाले भरत जी? चक्रवर्ती भरत जी नहीं, ऋषभ देव के पुत्र नहीं, रामचंद जी के भैया भरत जी, हाँ घर में बैरागी, उनका वैराग था देखने लायक, दीक्षा लेने की तैयारी थी उनकी। जैसे ही दशरथ जी दीक्षा लेने वाले थे भरत इनका रामचंद्र जी का राज अभिषेक करके, और वैराग हो गया था दशरथ जी को, थोड़ा जैन रामायण में थोड़े अलग ढंग से लिखा, प्रचलित रामायण में अलग है, तो इसको भी समझना चाहिए। हाँ केकई ने जैन रामायण के हिसाब से वो कहते नहीं, केकई ने कुछ उपद्रव नहीं करा। कैसा हुआ क्या था कि बहुत बहादुर थी केकई, और इन्होंने जो है उंगली लगा दी थी जब रथ में रथ का चक्का निकलने वाला था, तब इनसे प्रसन्न होकर के इनको वरदान दे दिया था, और इन्होंने मिथ्या वरदान नहीं मांगा था, रामचंद्र जी को वनवास हो जाए ऐसा नहीं मांगा था, मेरे भरत को राजगद्दी मिल जाए ऐसा द्वेष भाव भी नहीं था। भरत जी तो चले गए थे अपने ननिहाल में और वहां थे वो, और इस बीच में रामचंद्र जी का तिलक होना था, और रामचंद्र जी के तिलक की बात सुनकर के भरत जी को बुलाया गया था, भरत जी भी आ गए थे, और दशरथ जी को तिलक करके और वनवास जाना था दीक्षा लेने की। अब केकई घबराई कि रामचंद्र जी ये राज्याभिषेक हो रहा है इनका, वो तो ठीक है बहुत बढ़िया खुशी की बात है, लेकिन दशरथ जी चले जा रहे हैं, और दशरथ जी को वैरागी होते देख करके भरत जी भी वैरागी हो गए। वे भी दूसरे दिन ही जाने वाले थे, तो इनने कही दो ही चले, हमारे स्वामी भी और हमारा पुत्र भी, इसको रोको। रोकने का क्या उपाय है, इसको गद्दी दे दो, रुक जाए। अब रामचंद्र जी को गद्दी मिल रही है, भरत जी को कैसे मिले? तो दशरथ जी से कहा था कि भरत को रोक लो, आप तो दीक्षा ले रहे सो ठीक है, आपकी तो उम्र हो गई, भरत रुक जावे तो उपाय यही है कि भरत को गद्दी दे दो। उनने कहा ठीक है, ऐसा कर देते। ओ, रामचंद्र जी को मालूम पड़ा कि भरत जी हमसे पहले जा रहे छोड़ करके घर, तो इनको रोकने का उपाय यही है, और मैं अगर यहां रहूंगा तो भरत गद्दी पे बैठेगा नहीं, छोटा भैया, इतना विनय है उसके अंदर। इसलिए सबने मिलकर के ये उपाय किया था कि हम तो चले जंगल, छोड़ ही दे रहे, जंगल वंगल कहां गए थे, इतने पुण्य आत्मा जीव है कि जहां जाए उतने मंगल हो जाने का जंगल। हाँ मैंने हम, आप पढ़ो अगर तो ब्याह वही होते रहे उनके पूरे 12 साल तक, ढेर व्यापार वैभव मिलता रहा उनको। हाँ बहुत ये पहले वैभव माना जाता था, उसमें जो जगह जगह उनके सेवा में कन्याएं भी भेंट करती, भेंट स्वरूप दे दी जाती थी, वैभव के रूप में था इस तरह से उस समय। तो ऐसी स्थिति में और फिर भरत जी को गद्दी पर बिठाला गया, तो वो जो आता ना कि चरण पादुकाएं रख दी थी, वो प्रतीक रूप है कि बैठे तो रामचंद्र जी ही हैं, मैं तो उनका सेवक हूं, राज्य का मैं मालिक नहीं हूं। इसलिए कहते हैं कि भरत जी वैरागी, उन्होंने जब तक रामचंद्र जी, उनने सोचा था कि अब तो जी उसमें रचपच गए होंगे, अपन लौट हैं, सो मगर भी बाटा देखे थे कि जी लौटे भरत और इनको सौंपे और हम जी जाएं, और दीक्षा ले ली थी भरत जी ने जैसे ही रामचंद्र जी वापिस लौटे थे। ऐसा वैराग उनके अंदर था। उन भरत जी की चर्चा आती है कि उन्होंने कभी अपने, जब शिवाजी को अहंकार आ गया तो रामदास जी ने भिक्षा मांगी थी कि भिक्षा दो शिव शिवा भिक्षा दो। एक दिन सुबह सुबह, अरे क्या मांग रहे हैं आप मेरे गुरु होकर मेरे से भिक्षा मांग रहे हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं भिक्षा में? क्षण भर को शिवाजी सोच में पड़ गए कि क्या बात है, गुरु आज मेरे से भिक्षा मांगने आए हैं, मतलब मैं कहीं चूक रहा हूं, ये मेरे मुझे संदेश देने आए हैं। और वास्तव में उनको जागृति आ गई कि मैं इस राज्य का अपने को मालिक मान के राज्य कर रहा हूं, ये तो मेरा मिथ्या भाव है। तो मालूम एक कागज पे लिख के क्या दिया था, पूरा राज गुरु का है, और भिक्षा पात्र में डाल दिया। 5 मिनट बाद गुरु जी प्रसन्न होकर वापिस लौट गए और बाद में यही कहा कि शिवा मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी, तुम अहंकारी होते जा रहे थे कि राज्य तुम्हारा है, नहीं तुम सिर्फ नौकर हो। आज जितनी कुर्सी की जितनी पद प्रतिष्ठा की दौड़ है वो सब क्या है, इसी वजह से है। और अगर व्यक्ति अलिप्त हो जाए, मुझे तो किसी पद पर बिठाला है सेवा के लिए, अगर राष्ट्रपति भी ये मान करके और देश की सेवा करे कि मैं तो सिर्फ लोगों के वजह से यहां बैठा हूं उनकी सेवा और कोई नहीं, तो आज देखिएगा राम राज जाने में राम राज्य के मायने क्या है। यही है कि उनको जबरदस्ती गद्दी दी जाती थी वे लेते नहीं थे, जबरदस्ती पद पे बिठाला जाता था वे पद से अलिप्त रहते थे, इसलिए राम राज्य साथ सब आनंद थे। और आज अगर हमारे अपने जीवन में हमारी अशांति है, हमारे जीवन में दुख है, तो इसका मतलब हमारे विचारों में कहीं ना कहीं खोट है, और ये विचारों की खोट निकल जाए, हम इस संसार के स्वामी कर्ता और भोक्ता न रहें, पर पदार्थों को पर मान करके सिर्फ उनका उपयोग करें, फिर देखिएगा कैसे हमारे जीवन में और परिवर्तन नहीं आता है, अवश्य परिवर्तन आता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको अपन देखें, वैसे तो इतनी ही बात है और ज्यादा नहीं है, अलिप्त रहने की बात। अन्य तनुप्रेक्षा और एकत्व अनुप्रेक्षा में जरा शांत है, बारीक शांत, एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे, मैं एक अकेला हूं और ये सब पृथक हैं, मैं ऐसा हूं मैं ऐसा हूं, यह कहना एकत्व अनुप्रेक्षा, ये पर हैं ये पर हैं, ऐसा कहना या नित्य उपेक्षा, एक पॉजिटिव अप्रोच है एक नेगेटिव, यह मेरा है या कि यह मेरा नहीं है और यह मेरा है, बस यह मेरा है ये एकत्व है और यह मेरा नहीं है यह अन्यत्व। इस तरह एकत्व और अन्यत्व दोनों के अंदर एक ही बात कही जा रही है, जो पर है उसे पर मानना और जो स्व है उसे स्व मानना। ये विचार हमेशा 24 घंटे बना रह सकता है, ऐसा नहीं है। आप ये समझिए कि कठिन है, ऐसा नहीं मानिएगा। मैंने इसलिए बहुत छोटे छोटे एक और उदाहरण देता और फिर बात खत्म, फिर अपन कल बैठेंगे फिर करेंगे। ज़्यादा बहुत सारी बात करने से भी क्या, उसको जीवन में आज करके देखिए कैसा लगता है। एक चीज़ को अपनी, ये हमारा पेन है, ठीक, हमने मान लिया है कि हमारा है, वैसे है नहीं, पर इसको आज मेरा नहीं ऐसा मान के देखें, करके देखें घर जा करके, ऐसे नहीं यहीं पर बैठ कर, हाँ फिर देखें क्या मजा आता है। बहुत सहज रूप से जीवन हो जाता है। क्या हुआ था, एक वृद्ध और एक वृद्धा थे, कहानी सबकी सुनी होगी। तो दोनों जन को बहुत वैराग हो गया। अच्छा, और हमेशा पुरुष को यह लगता है कि उससे ज्यादा वैराग है, उसका अहंकार ही ऐसा है, उसको लगता ही है, वो अपने को सुपीरियर शुरू से मानता है। इस संसार में जन्म लेते ही साथ सुपीरियर मानता और दूसरे को इंफीरियर मानता है। तो उस वृद्ध को लगता था कि मेरा वैराग ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अब ये भी हमारी जीवन साथी हैं, अब ये भी वैराग की बात करने लगी हैं, तो ठीक है, इनका भी वैराग ठीक है। दोनों जन अब चले जा रहे थे रास्ते से, और पहले थोड़ा सा अदब था, आदर था। हाँ, इसको मैं आदर मानता हूँ, अदब मानता हूँ कि साथ साथ में नहीं चलते थे और थोड़ा आगे पीछे डिस्टेंस मेंटेन करते थे, भीतर से नहीं बाहर से। अब तो भीतर से डिस्टेंस रही, आउट बाहर से जरूर संगे संगे बैठे रहे, ठीक है। अब सब जमाने की बात है भाई, अपने अपने अलग अलग समय की बात है। भीतर से कितो दूर रहे आवे, मनो पास पास बैठे भैया को जाने कह देवे के अलग अलग हो गए। पहले लोग इस तरह, एक आदर था, एक सम्मान था, तुम आगे चलो हम आते, अच्छा नहीं मालूम नहीं पड़ता है, एक दूसरे को आदर दे रहे हैं, ठीक है। तो वृद्ध आगे आगे जा रहे थे, अचानक उनकी दृष्टि पड़ी, अरे इतने सारे सोने के सिक्के रास्ते में किसके पड़े। फौरन ख्याल क्या आया, हम तो ठीक है कि विरक्त हो गए हैं, मानो पीछे दादी आ रही और इनको तो सोने होने के नोरों को रहता ही है बहुत ज्यादा, अब इनको मन ने डोल जावे, देखना दूसरे की चिंता बहुत। तो उनने क्या किया, जल्दी से जब तक वो आए पास में, जब तक पैर से उसके ऊपर धूल डाल दी, आ गई वो तो पीछे ज्यादा दूर थोड़ी थी, उनने देख लिया, कह ले क्या कर रहे हो, हम तो आपको बहुत वैरागी समझते थे। तो कह ले क्या कर रहे हैं, बात ये है कि सोने के सिक्के डले थे, हमने सोची तुम्हारा मन न डोल जावे इसलिए हमने उस पे धूल डाल दी। कहते अरे तुमने, हम तो सोच रहे थे तुम तो अब सोने और धूल में कोई अंतर नहीं करते होगे, तुमने तो ये अंतर किया दोनों में कि ये धूल है ये सोना है। मैं तो ये मानती हूं कि तुमने धूल पर ही धूल डाल दी है और कुछ नहीं। ये है हमारी अनाशक्ति, ये है हमारी अलिप्तता। हम वस्तुओं को मूल देना बंद कर दें तो समझना कि हम अलिप्त होकर के जी। हम सोने को सोना मान रहे हैं, कीमती मान रहे हैं, धूल को धूल मान रहे हैं और घटिया मान रहे हैं। नहीं, सोने को सोना मानना और धूल को धूल मानना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन सोना सोना है इसलिए कीमती है, बस यहां से शुरू होता है प्रपंच। और धूल को धूल मानना इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धूल वेस्ट है, व्यर्थ है, यहां से शुरू होता है इस्ट और अनिष्ट की कल्पना, और इसी में सारा संसार उलझा हुआ है, अपन सब उलझे। आज आचार्य भगवंत ने हमें क्या समझाया, आज अपन को क्या विचार करना भैया इस अन्यतन प्रेक्षा से, कि मैं व्यर्थ ही यहां पर इस अनिष्ट की कल्पना करता हूं, मैं अब पर वस्तुओं में इस अनिष्ट की कल्पना करना कमती करूं तो मेरे जीवन में शांति आएगी, मेरा जीवन अच्छा बनेगा, मैं अलिप्त होकर के भी जीवन जी सकता हूं, इसी संसार के बीच इस संसार में अलिप्त रह के भी जीते हैं और इस संसार में लिप्त रह के भी जिया जाता है, मुझे दो में से कौन सा चुनना है, एक में अशांति है एक में शांति है, मुझे शांति का रास्ता चुनना है, मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाने का रास्ता चुनना है, तो यही है कि मैं अधिक से अधिक समय इस अनिष्ट की कल्पना से रहित होकर के अलिप्त होकर के जीवन, इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
हे गुरुवर शाश्वत सुखदर्शक यज्ञनग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है, वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप शैल नदी तट पर करुणा लेकर शांति घड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में, सम की अभिन शर्मणिया
हे
शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरु वर प्रणाम, कदम नाश वेखो
ज्ञान
के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो बानु शिव कानी है, अनुभव बताए वेखो जीवों के जताए वेखो न सताए वेखो भव्य हो रे आनी है, जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सुवाणी मस्तक नमो सदा देत बोलो, भारती तो जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन,
के चंदन कंदन को कई कर खुली
डबल मंगल गान रवा खुले इन ग्रहे
ओम परम पूज्य स्वर्ण श्री क्षमा सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में ओ
जन्म में।